समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, जुड़ गए हैं आप हमारे साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे में। वैसे आज सवेरे जब मैं कार्यालय आ रही थी तब देखा कि हल्की सी बारिश और संदल सी हवा ने पूरा समा बांध रखा था। अभी जरा आप भी देखिए बाहर रोशनी आई कि नहीं। वो क्या है ना, सुहावना मौसम अगर हो तो मन आह्लादित हो उठता है और फिर जिसकी सुबह अच्छी गुजरे उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। देती हूं मैं आपको पूरे दिन की शुभकामना और अनुमति लेती हूं कार्यक्रम आज सवेरे को आगे बढ़ाने की। हृदय तल से आपको प्राची प्रिया का प्रणाम। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रस्तुतकर्ता सुभद्रा रामचंद्रन हैं।
हेलो प्राची प्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू एंड हैप्पी थर्सडे टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो लॉट्स टू शेयर विद यू ऑल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस। प्राची,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के टाकिना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
Maharashtra government yesterday approved the Vaiganga Nal Ganga river linking project in a significant decision aimed at large scale irrigation in talukas affected by former suicide in Vidarbha region. The project, with an estimated cost of 85,000 crore rupees, plans to channel water from Vaiganga, a tributary of Godavari river, to the Vaiganga project in Buldhana district and connected to Nal Ganga, a sub-tributary of Tapi River. To achieve this, a 426-kilometre canal network will be constructed. According to a release issued by the Chief Minister's Office, 15 talukas of Nagpur, Vardha, Amravati, Yavatmal, Akola and Buldhana will be brought under irrigation under the project. Water can be used for drinking purposes as well as industrial use. The release further stated that to ensure that water can be used even in Rabi season, 31 storage reservoirs are also being built. The Reserve Bank of India, RBI Governor Shaktikanta Das, will announce the bi-monthly monetary policy today. The RBI's Monetary Policy Committee began its three-day bi-monthly policy meeting on Tuesday. The Apex Bank has kept the repo rate unchanged in the previous 8 policy reviews since February 2023.
बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल विकारुज्जामान ने कहा है कि देश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का आज रात शपथ ग्रहण होगा। उन्होंने अगले 3-4 दिनों में देश में हालात सामान्य होने की भी संभावना व्यक्त की। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
The Indian Space Research Organization, ISRO, will celebrate the Independence Day by putting an Earth Observation Satellite, EOS. It will be put in the orbit by Small Satellite Launch Vehicle, SSLV. ISRO said the SSLV's third and final development flight will be on 15th of August this year at 9:17 a.m. from Sriharikota, Andhra Pradesh. The rocket will carry the micro-satellite EOS-08, weighing about 175.5 kilograms. The government has announced a Rashtriya Vigyan Puraskar, one of the highest recognitions in the fields of science, technology and innovation in the country. The ISRO Chandrayaan 3 team will be awarded the Vigyan Team Award for their contributions to space science and technology. Former director of the Indian Institute of Science, Professor G. Padmanabhan, has been selected for the Vigyan Ratna Award in Biological Sciences. The award recognizes lifetime achievements and contributions in any field of science and technology. The award ceremony for all categories will be held on the 23rd of this month in conjunction with the National Space Day.
भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का फाइनल जीत लिया है। भारत ने यह मुकाबला 23-25, 25-14, 22-25, 25-21 और 15-5 से जीता। ये दूसरी बार था जब नेपाल घरेलू मैदान पर खिताबी मुकाबले में भारत के सामने था और 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के बाद ये पहली बार था। कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में भारत ने दूसरी बार खिताब जीता है। लीग चरण में एक बार नेपाल से हारने के बावजूद भारत फाइनल में चैंपियंस बनने में कामयाब रहा है। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और कौशल का प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारत ने अंततः एक करीबी मुकाबले में जीत हासिल की और स्वर्ण पदक जीत लिया। नेपाल की रजत पदक हासिल किया और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। और अब चलते हैं मेट्रो न्यूज की तरफ। सुभद्रा।
यस राजीव, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। वादा धर्मा राव, अ 32-year-old फिशरमैन फ्रॉम रामयापट्टनम विलेज इन सोमपेटा मंडल ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट व्हाइल फिशिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। धर्मा राव, हु हैड रिसेंटली माइग्रेटेड टू चेन्नई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंटली फेल फ्रॉम द फिशिंग बोट इन टू द वॉटर्स एंड सफर्ड फेटल इंजरीज। धर्मा राव हैड सेंट ₹30,000 होम जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द एक्सीडेंट टू पे फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन फीस। मेनी फिशरमैन फ्रॉम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट टिपिकली माइग्रेट टू Gujarat and Tamil Nadu from July to August every year in search of livelihood opportunities, returning home by April. Relatives of deceased have pointed out that when a fisherman from the district dies in an accident, his family does receive any insurance benefits. They have urged the government to provide some form of ex gratia compensation to the bereaved families in such tragic circumstances. Sanitary workers in Greater Chennai Corporation were recently given vacuum-operated garbage suction vehicles to help them do the work. 15 of these vehicles are deployed at places where solid waste management is overseen by Greater Chennai Corporation. The vacuum cleaner has a 10-meter-long and 2.5 cm-wide flexible plastic pipe with a handle at the 5-meter mark mounted on a small van. It has a storage capacity of 2 cubic meters and an engine which will be used to sweep under electrical transformers and help to access unsafe places. It can also be used to suck waste from narrow nooks between two houses in slum board apartments. This is an initiative as part of a massive cleanliness drive launched by Greater Chennai Corporation. Getting to Bengaluru now, Bangalore Metro Rail Corporation and National Livelihood Mission have entered into an agreement in Bengaluru to set up a marketplace for rural and urban women entrepreneurs and self-help groups in Swami Vivekananda Road Metro Station. To be named as Bangalore Shanti, it will promote self-help groups, khadi enterprises, artsmen and craftsmen and handicraft producers to sell their wares. The agreement is signed for a period of 1 year. The Metro Rail Corporation has developed the Sante or village fair like a rural hut with clusters of stalls in the fashion of folk architecture. The National Livelihood Mission provides skill development training to self-help groups to take up revenue-generating ventures. The Managing Director of Bangalore Metro Corporation, M. Maheshwar Rao, has said on the occasion that a rural market, rural and urban women entrepreneurs will be very beneficial. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated a two-day investment session in Bengaluru to attract investors. He will hold an interactive session today with IT, electronics, textile, aerospace, defense, tourism, automobile, pharmaceuticals and healthcare, and medical devices manufacturing companies. He is also slated to meet industrialists to promote investments in Madhya Pradesh. He will be sharing information on investment opportunities provided by his state during the one-to-one meetings and roundtable meeting. A presentation will be made on Global Investors Meet 2025 and Advantage MP. Getting to Hyderabad now, Telangana government and the World Bank have decided to set up a cross-functional team to conceptualize a viable project in skills development, urban rejuvenation, reimagination, net zero developments, citizens' healthcare, diagnostics and electronic records. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy met with the World Bank President Ajay Banga to discuss potential partnerships and to positively impact the lives of over 4 crore people in Telangana. The discussions focused on forging a roadmap for collaboration in several key areas, including skills development, urban rejuvenation, net zero and healthcare. The Chief Minister's office informed the media that during the hour-long meeting, the Chief Minister and the World Bank President decided to establish cross-functional teams to conceptualize viable projects in each area. The primary themes of the discussions were people, the planet, sustainability, health, skills and jobs. The World Bank's backing is expected to significantly boost several key visions of Chief Minister Revanth Reddy, including the Musi River Rejuvenation Project, establishment of a skilled university, Future City Initiative, citizen healthcare, and the development of Hyderabad 4.0. The release further said the World Bank expressed optimism about the balanced vision for Telangana and Hyderabad and highlighted its past successes in generating positive outcomes in the region through various initiatives. Prachi, over to you now for the rest of the news.
Bilkul, chaliye ab le chale hum aapko Delhi, Mumbai aur Kolkata ki khabron ki taraf. दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कौशल संवर्धन एवं उद्यमिता विकास स्कूल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. इस कार्यशाला का विषय एम्पावरिंग एजुकेटर फॉर एंटरप्रेन्योर एक्सलेंस अ स्टेप टूवर्ड्स विकसित भारत 2047 था, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें नए पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए नवीन शिक्षण पद्धतियों की व्यापक समझ प्रदान करना था. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालयों के डीन प्रोफेसर बलराम पाणी ने कहा कि कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास विकसित भारत 2047 के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से योगदान देने के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व हैं. इस कार्यशाला में दिल्ली विश्वविद्यालय के 19 महाविद्यालयों के 61 शिक्षकों ने भाग लिया. राजधानी के भारत मंडपम में से 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हुआ. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के कार्यकारी निदेशक रजत अग्रवाल ने इस मेले का उद्घाटन किया. इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि इस मेले के माध्यम से ITPO का लक्ष्य पुस्तकों की प्रदर्शनी के साथ साथ व्यावसायिकता में उत्कृष्टता हासिल करना है. 5 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है. दिल्ली पुस्तक मेले में इस वर्ष 90 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं. इस बार मेले का मुख्य आकर्षण स्टेशनरी और कॉरपोरेट गिफ्ट मेला है. मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के साथ साथ उपहारों की भी एक विशाल श्रृंखला उपलब्ध है. मेले के पहले दिन कई राज्यों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और प्रकाशक पहुंचे. मेले में आगंतुकों के लिए विशेष तौर पर एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां लोग पुस्तकों के साथ साथ देश विदेश के व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं. आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मेले में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं. दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने DND फरीदाबाद सोहना हाईवे के सौंदर्यकरण के लिए वृक्षारोपण किया. श्री सिंह ने बताया कि इस मॉनसून में NHAI ने राजमार्ग के किनारे लगभग 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए NHAI के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है. ये प्रक्रिया प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ ही निवासियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करेगी. आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने की. बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक के दौरान सुरक्षा से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यातायात प्रतिबंध और सीमाओं पर अनाधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना भी बनाई गई. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों की पुलिस से मिलजुल कर काम करने की अपील की. और अब डालते हैं एक नजर मुंबई समाचार की ओर. महाराष्ट्र कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए TRTI, बाटी, सारथी, महाज्योति, अमृत, की तर्ज पर एक अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी एमआरटीआई स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। राज्य में समुदाय कई मुस्लिम और अल्पसंख्यक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार के प्रयास सफल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कुल 11 पदों को मंजूरी दी गई है। इसी तहत कैबिनेट ने इस संस्थान की स्थापना के लिए पदों के वेतन, कार्यालय व्यय, पढ़ाई, प्रशिक्षण समेत कुल 6,25,00,000 रूपये के खर्च को भी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद और नगर पंचायत कर्मचारी और कैडर कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से नवी मुंबई के बेलापुर से मुंबई के चर्च गेट स्थित मंत्रालय तक एक लंबा मार्च निकाला गया। इन कर्मचारियों की सभी लंबित मार्गों को लेकर यह लॉन्ग मार्च निकाला गया। इसमें प्रदेश भर से कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस लॉन्ग मार्च पर विचार नहीं किया गया तो वे 9 अगस्त से भूख हड़ताल करेंगे। अब आइए ले चलें आपको कोलकाता समाचार की ओर। कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। बंकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक श्री लक्ष्मण चंद्र बसाक ने आज कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा गांव बनाने की पहल की है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर में एक वस्त्र गांव बनाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तांत शिल्पी के नाम से लोकप्रिय तांत कारीगरों की समग्र विकास करना है। श्री बसाक ने यह भी बताया कि भविष्य में राज्य में ऐसे और भी हथकरघा गांव बनाए जाएंगे। सरकार बुनियादी ढांचा तैयार करेगी और बुनकरों को प्रशिक्षित करेगी तथा अंतिम उत्पाद को बेचने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। केंद्र और राज्य सरकारें हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रही है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के वस्त्र निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री आशीष नारायण बनर्जी भी मौजूद थे। और अब एक नजर मौसम की ओर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। वहीं अगर बात हम कोलकाता की करें तो कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की से बारिश होने की संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius, maximum will be around 35. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is 20 degrees Celsius, maximum will be around 27. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius.
Aur Paris Olympic ki khabron ke saath hain Mahendra Singh Lalas.
बुधवार का दिन भारतीय खेमे में निराशा लेकर आया। दिन की शुरुआत ही 50 किलो फ्रीस्टाइल भार वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने की खबर से हुई। विनेश का वजन थोड़ा सा ज्यादा पाया गया था। 53 किलो भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में अंतिम पंगाल तुर्की की ज़ेनेप येटगिल से 10-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की एकमात्र उम्मीद थी। महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग के स्नैच में 88 और क्लीन और जर्क में 111 कुल 199 किलो वजन उठाकर मीराबाई चानू चौथे स्थान पर रहीं। आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलंपिक पदक पर भाला फेंकने उतरेंगे। पुरुष हॉकी में भारत लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में अपना कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगा। इस बार सामने होगी स्पेन की टीम। गोल्फ के महिला वर्ग में दीक्षा डागर और अदिति अशोक आज गोल्फ कोर्स में उतरेंगी। फ्री स्टाइल कुश्ती के पुरुष वर्ग के 57 किलो भार वर्ग में अमन सहरावत के सामने होंगे नॉर्थ मैसेडोनिया के व्लादिमिर इगोरोव और इसी भार वर्ग के महिला वर्ग में अंशु मलिक के सामने होंगी अमेरिका की हेलन मैरोलीस। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस।
एंड फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आज सवेरे। वी आर स्टार्टिंग विद सम इवेंट्स नाउ। 1509 Emperor Krishnadevaraya was crowned, marking the beginning of the regeneration of the Vijayanagara Empire in southern India. 1549 France declares war on England. 1786, U.S. Congress unanimously chooses the dollar as a monetary unit for the United States of America. On August 8, 1942, Mahatma Gandhi gave the clarion call of do or die to the people of India. That's the call for Quit India, and the movement began in earnest. It is considered a major turning point in our struggle for freedom that we achieved in 1947. On August 8, 1945, Soviet Russia declared war on Japan, sent troops into Japanese-held Manchuria. On 1955 this day, the Geneva Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy was opened, sponsored by the United Nations. The conference was presided over by Dr. Homi Bhabha.
और आज के ही दिन 2003 में 15 छोटे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया और एक साल पहले यानी कि 2002 में ताइवान आजाद होने के लिए आज के ही दिन जनमत संग्रह योजना से पीछे हट गया था.
Going back in time, 1963 this day, a gang of robbers steal £2.6 million in bank notes off an English train. This is later called the Great Train Robbery and made into a motion picture and TV shows as well. In 1975, friends, the term global warming appeared for the first time with the publication of Wallace Smith Brocker's paper titled Climate Change, Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? So moving on to births and deaths, what happened this day? Today, of course, is the birth anniversary of tributes to Dilip Sardesai, who made history as the first cricketer born in Goa to represent India in Tests. As a talented batsman, he showcased his skills on the international stage, leaving an enduring legacy in the world of cricket. And friends, country music legend Glenn Campbell passed away this day in 2017 at the age of 81. A gifted singer, accomplished guitarist, Campbell became an international superstar with a string of pop and country hits released in the 1960s and the 70s. At his peak, he also hosted a musical variety television show and starred in several feature films.
I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a
एकदम बेहतरीन बेहतरीन म्यूजिक था. और आज हिंदी साहित्य के पुरोधा भीष्म साहनी की जयंती है. उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है. आधुनिक हिंदी साहित्य के जीवंत स्तंभों को जब भी याद किया जाता है तब भीष्म साहनी का नाम उजागर होता है. उनकी लेखनी में मानवीय मूल्यों की झलक हमेशा नजर आई. साहित्य, संगीत और कला प्रेमी साहनी ने अपनी लेखनी में एक जगह उल्लेखित किया कि अपने अंदर के कलाकार को जगाओ, लिखो, गाओ, नाचो और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाओ. सुभद्रा, इजंट इट राइट?
यस, ऑफ कोर्स.
भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की थी जिनमें उन्होंने उनके एक उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण किया गया था और बहुत ही प्रचलित हुई. वो लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया, बड़ा सराहा. उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हुए. 1998 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा.
एंड फ्रेंड्स, Jazz legend Cannonball Adderley passed away this day in the year 1975. One of the most prominent popular American jazz musicians of the 50s and 60s, who played several instruments, but loved his work on alto saxophone and his association with Miles Davis, another jazz great who had influenced Cannonball Adderley, alto saxophonist. Mr. Benny Carter took birth this day in 1905, original influential alto saxophonist, who was also a masterly composer, arranger, important band leader, trumpeter, clarinet player, was born in New York City. And birth anniversary of Mel Tellis, American songwriter, entertainer, who composed more than 2,000 country music songs, music and lyrics, many of which became standards. Overcoming a pronounced stammer, he achieved stardom in the 1970s as a country singer, screen actor and comedian.
You paint up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadows on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy.
और आज न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज केन स्टुअर्ट विलियमसन का जन्मदिन है। ये न्यूजीलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो वर्तमान में न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। इंग्लैंड में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम रहा। उन्होंने महज 17 इनिंग में 1000 रन पूरे किए हैं। 2018 में विलियमसन ने वनडे में अपने 5000 रन पूरे किए थे। वो वनडे मैच में चौथा सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी हैं। न केवल एक उम्दा खिलाड़ी हैं, बल्कि एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति भी वो नजर आते हैं। एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाददाताओं से ये सवाल पूछने पर कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए।
Everybody, they're allowed to be themselves. I think that's the good thing about the world. And everybody should be a little bit different as well. And very difficult question to answer. That's probably my best answer is just be yourself and try and enjoy what you do.
बिल्कुल, सुभद्रा केन ने एकदम सही बात कही कि आप जैसे हैं वास्तव में वैसे ही रहें तो ही अच्छा।
यस, दैट्स ट्रू। एंड मोर बर्थडेज, स्पोर्ट्स बर्थडेज, दैट इज बर्थडे रॉजर फेडरर, वेरी फेमस स्विस टेनिस प्लेयर हु डोमिनेटेड द स्पोर्ट्स सीन विद हिज एक्सेप्शनल ऑलराउंड गेम। His total of 20 career men singles Grand Slam championships was a great achievement in tennis history. Birthday wishes to a lady weightlifter from Manipur who as a child used to lift firewood and now she is one of India's biggest weightlifting stars. Saikom Mirabai Chanu won a silver medal in Tokyo Olympics 2020, that's 4 years ago. Chanu has been honored with Padma Shri, the fourth highest civilian award of India in 2018. August 7th, that's just yesterday, Chanu participated in the 49 kg category despite the hip joint injury sustained during her 2023 Asian Games. And of course, she missed the medal by 1 kg with the score of 199 kg. Of course, great going for this lady from Manipur. And friends, August 8, 1961, Irish music legend from U2, Dave Evans, popularly called The Edge, celebrates his birthday. He plays guitar, keyboards and sings as well. Lines from U2's classic track, Angel of Harlem. Here goes.
और आज हिंदुस्तानी वोकलिस्ट रजा अली खान का भी जन्मदिन है। रजा अली खान का जन्म बॉम्बे में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद मुनव्वर अली खान के घर हुआ था, जो महान उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के बेटे थे। उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने दादा से और फिर अपने पिता से मिली। वो अपने पिता के साथ संगीत समारोह में भी जाया करते थे। ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल आदि इन सबकी प्रस्तुति करते थे। पेश है आपके लिए उनकी आवाज में मंत्रमुग्ध कर देने वाली ठुमरी। कितना सुंदर। लेकिन अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।